राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानी ताई गौरानी ताई गौरानी ताई जय गौरानी ताई जय गौरानी ताई गौरानी ताई गौरानी ताई जय गौरानी ताई प्रभुपाद 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 सुनिताई गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके श्रीमद्भागवतम स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 26 निरुज्जम पुरी अम्बु त्रोणा विरुद्धम बृहत्वनम तथा अधुना यत्र आस्ये त्वं सुरहद्वृतं कच्चित् पशवं निरुज्जं कच्चित् पशवं निरुज्जं भूर्या अम्बुतोण विरुद्धम् ूर्याम्बुतृणविरुद्धम् बृहद्वनं तदधुना बृहद्वनं तदधुना यत्राश्रे त्वं सुहृद्वित यत्रास्य त्वं सुहृद्वृतम् कच्चित् पशवं निरुज्यम् भूर्या अम्बुतोण विरुद्धम् बृहद्वनं तदधुना यत्रास्य त्वं सुहृद्वृतम् कच्चित् पशवं निरुज्यम् कुर्याम्बोतॄणविरुद्धम् बृहद्वनं तदधुना यत्रास्य त्वं सुहृद्वृतः
कश्चित् पशव्यं निरुज्यम् कुर्याम्बोतॄणविरुद्धम् बृहद्वनं तद् अधुना यत्रास्य त्वं सुहृद्वृतः
शब्दार्थ कच्चित् चाहे पश्यवम गौ की सुरक्षा निरुजम बिना कष्ट या बिना रोग पूरे पर्याप्त अम्बो जल तृण घास विरुद्धम पौधे बृहद्वनम विशाल जंगल तथा ये सारे प्रबंध वहाँ है। अधुना अब यत्रा जहाँ आसे रह रहे हैं त्वम तुम सुहृद् वृता मित्रों से घिरे हुए अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवरान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। हे मित्र, हे मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं, क्या वह का जंगल पशुओं गावों के लिए अनुकूल है? आशा है कि वहाँ रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। यह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से हरा पूरा होगा। तात्पर्य, मानव सुख के लिए पशुओं विशेषतया गवों की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए वसुदेव ने पूछा कि क्या जहाँ नंद महाराज रहते हैं वहाँ पशुओं के लिए अच्छा प्रबंध है? समुचित मानव सुख के लिए गवों की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। उसका अर्थ हुआ कि जंगल तथा घास और जल जल से पूर्ण पर्याप्त चराहना होना चाहिए। यदि जानवर सुखी रहेंगे तो प्रचुर दूध मिलेगा, जिससे मनुष्य को तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी, जिनसे वे सुखपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। भगवद गीता में 18:44 में आदेश है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जन्म। भला पशुओं को समुचित असुविधाएं प्रदान किए बिना मानव समाज किस तरह सुखी बन सकता है? यह बहुत बड़ा पाप है कि लोग कसाय घर चलाने के लिए पशुपालन कर रहे हैं। इस आसुरी कृत्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना अवसर विनष्ट कर रहे हैं। चूंकि कृष्ण के उपदेशों को कोई महत्व नहीं दे रहा है, इसलिए उनकी कथाकथित सभ्यता की प्रगति पागलखाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह है। ओम ज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिष्यार्थमेकं पुरुषः पुराणं श्रीकृष्णचैतन्यशरीरधारी कृपां बुधिर्यास्ताहं प्रपद्ये सूर्यशतसमकान्त्यरुणवसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा स्थापित श्रीमद् भागवतम कक्ष में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। क्रम के अनुसार दसम स्कंद पांचवा अध्याय 26 नंबर का श्लोक और आज चर्चा होगा। प्रसंग चल रहा है, सभी भक्त अवगत है प्रसंग से। वसुदेव और आनंद महाराज का मिलन, जो कर चुकाने के लिए गोकुल से मथुरा आए हैं, और बहुत दिनों के बाद श्री वसुदेव जी और आनंद महाराज का भेंट हो रहा है। उस प्रसंग के अंतर्गत श्री वसुदेव जी ने पिछले 3 श्लोक में कई चर्चा की। पहले के श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की। दुर्लभ है उन लोगों का उन दर्शन जो प्रिय होते हैं, श्री वसुदेव जी कहते हैं, और समय के अनुसार कभी कभी मिलते हैं और कभी कभी बिछड़ भी जाते हैं। तो उसी तरह वार्तालाप करते करते श्री वसुदेव जी आज के श्लोक में कुछ अलग तरीके से थोड़ा चर्चा करते हैं। वसुदेव जी पूछ रहे हैं सर्वप्रथम, वो नहीं पूछे कि आपकी बालक आपके पत्नी कैसे हैं। उसने पूछा कि आपके पशु और खास करके प्रभुपाद अंगित किया है गौ के बारे में पूछा कि जहाँ आप निवास करते हैं उस गोकुल नामक क्षेत्र में, वहाँ आपके पशु और सब ठीक है ना? और उनके साथ साथ वे भी कहते हैं कि निरोगी है ना, कोई रोग नहीं लगा है ना? और साथ साथ में वहाँ तीर्ण पूर्ण रूप से है, पौधे पूर्ण रूप से है, और साथ साथ में जल भी, क्योंकि पशुओं के लिए ये जो 3 चीज़ बताई वो बहुत आवश्यकता है। तीर्ण मतलब घास, पौधे मतलब जो घास तो चरवाने के लिए जाते हैं, फिर बाद में कुछ घास रात के लिए लाना पड़ता है, तो उसको लताएं कहते हैं, उनको काट कर फिर गौशाला में लाते हैं और रात को खिलाते हैं। तो उन लताओं फिर बाद में जल भी होना चाहिए। कहीं कहीं बार देखा जाता है बहुत सूखा होने के बाद कई पशु मर जाते हैं क्योंकि घास और जल नहीं मिलने के कारण। तो इसी तरह वसुदेव जी श्री नंद महाराज को पूछते हैं, और प्रभुपाद उसी को लक्ष्य में लेकर गौ को लक्ष्य में लेकर पूरा तात्पर्य दिए हैं। और साथ साथ में इस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी कथा कथित सभ्यता की प्रगति पागलखाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह है। चाहे मनुष्य समाज कितना भी प्रगति कर ले, वो किस तरह है, जिस तरह पागलखाने में कोई कितना भी सुविधा कर दे, वो क्या फायदा उस सुविधा का? और वो प्रयास करने वाला या मेहनत करने वाला वो भी पागल होगा, और जो उस पागलखाने में रहने वो तो पागल है ही। तो इसी तरह जब तक इस संसार में पशुओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं होगा, तब तक कितना भी प्रयास करे व्यक्ति वो सुखी नहीं हो पाएगा। उपदेशामृत में अत्याहार प्रयास श्लोक में श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि किसी को सुख और आनंद पूर्वक रहना है तो उनके पास 2 एकड़ जमीन और 1 गाय रहेगा तो निश्चित रूप से वो सुखी और आनंद पूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। लेकिन अभी इस वर्तमान समय में इस दुर्भाग्य है मानव समाज का, तो जहाँ गौओं की इतनी महत्व दी जाहरी है, उस समाज में गौओं का बड़ा बड़ा कत्ल खाने खोलने के लिए उनको परमिशन दिया जा रहा है और कई लाखों गाय रोज कटती है, तो इस कटती हुई गाय में अगर व्यक्ति सुखी रहना चाहते हैं तो किस प्रकार वह सुखी हो सकता है। प्रभुपाद अन्य जगह पर लिखे हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर गाय का खून बहता रहेगा तब तक ये मानव समाज कभी सुखी हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य शुरू करते हैं कि जब तक मनुष्य पशुपालन नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा। ऐसा कई जगह पर वर्णन है गाय की रक्षा के लिए, श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद में है वर्णन दूसरा अध्याय में, जो मनु महाराज के पुत्र थे विवस्वत के 10 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम था इश्वाकु और बाकी 9 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था प्रशग्न। उस नवमे अध्याय में वर्णन करते हैं, प्रशग्नस्तु मनो पुत्र गोपाल गुरुणा कृत पालिया मास गो यत्तो सत्राम विरासनम व्रत। उस प्रसग्रह को जो मनु महाराज के पुत्र थे उनको उनके गुरु ने आदेश दिया, यद्यपि के राजकुमार थे फिर भी उनके गुरु ने आदेश दिया कि आप गौशाला में जाकर गौ की रक्षा कीजिए। तो उस आदेश का पालन करने के लिए उस प्रसग्रह गौशाला में रक्षा के लिए गए, और किस तरह पालन करते थे वो, तो सुखदेव गोस्वामी लिखते विरासन व्रत, विरासन व्रत लेकर। विरासन का मतलब होता है जिस तरह हनुमान जी का हम कहीं भी विग्रह देखते हो तो किस तरह किस मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं, एक पग थोड़ा ऊपर रहता है और एक, क्योंकि वो इस तरह विरासन मुद्रा में या विरासन व्रत धारण करके जो है वो, विरासन का मतलब होता है कभी भगवान की आज्ञा मिले और कभी उनकी सेवा में तुरंत पालन करो। अगर ठीक से बैठा है तो आज्ञा होने के बाद खड़ा होगा धीरे धीरे करके, फिर भी आज्ञा पालन में देरी हो जाएगी। इस तरह हनुमान जी महाराज का कहीं भी विग्रह देखिए तो इस तरह विरासन मुद्रा में वो बैठे रहते हैं, और हमारे सह गोस्वामी में श्री रूप गोस्वामी भी उसी तरह का उनका बैठने का, विरासन मुद्रा में बैठने का जहाँ हम विग्रह देखते हैं उसी तरह है। श्री राधा दामोदर मंदिर में जहाँ विग्रह है रूप गोस्वामी का वो इसी मुद्रा में बैठे हैं भगवान की आज्ञा का पालन करने का। तो इसी तरह वो श्री प्रसंग्रह गुरु की आज्ञा से गौशाला में रक्षा कर रहे थे विरासन व्रत लेकर, 24 घंटा दिन रात वो पूरा गौशाला का रक्षण करते थे। तो हुआ क्या, एक दिन एकदा प्रवासी द गोष्ठम, एक दिवस प्रवेश किया गोष्ठ में उस गौशाला में, शार्दूल निशि पर्य वर्षती, शार्दूल मतलब वाघ, उस गौशाला में वाघ ने प्रवेश किया और रात का समय था और धीरा धीरा अभी अभी जो बारिश बरस रहा है उस तरह मंद मंद बारिश बरस रहा था, वर्षती और पूरा बादल एकदम छाया हुआ था घने बादलों से आकाश, और एकदम अंधेरा छाया हुआ था, कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी अंधेरे में वो गौ की रक्षा कर रहा था। तो उसी अंधेरा में वो एक वाघ उस गौशाला में प्रवेश किए, शयना गाय उत्थाय पितास्ता बभ्रभु व्रजे, तो उस गाय सो रही थी, रात का समय था, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, लेकिन वाघ आने के कारण उस गौशाला में थोड़ा हलचल मच गई और गौ खड़े होकर भागने लगी इधर उधर, अंदरों अंदर बाहर दिखाई नहीं दिया, तो गाय डर के कारण उधर उधर भाग रही थी, उसी में एक गाय को वाघ ने पकड़ लिया। तो वाघ को पकड़ लिया, वाघ ने पकड़ लिया जब गाय को, तब गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो चिल्लाने का आवाज उस प्रसंग्रह को सुनाई पड़ा, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो सोचा कि अभी मुझे रक्षा करना था, किस दिशा से आवाज आ रहा है उस दिशा में वो तलवार लेकर चल पड़े, और चलते चलते उसी स्थान पर पहुंचे जहां वो वाघ ने गाय को पकड़ा था, और उस अंधेरे में उसने प्रहार कर दिया। तो प्रहार करने के कारण शांत हो गया, सब शांत हो गया। फिर अंधेरा चला गया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, फिर सुबह हुआ, तब पता चला उस अंधेरे में पसंगरा ने गाय को काट दिया। उस उनको दिखा नहीं दे रहा था और तलवार चलाए तो गाय कट गई, और गाय कटने के साथ साथ वो वाघ का एक कान कट गया था, इसलिए कान कटने का कारण पीड़ा के कारण वाघ तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन जब इस सुबह पता चला कि पसंगरा के द्वारा गाय की हत्या हो गई, तब वहाँ सब उनके पिताजी, उनके भाइयों और उनके गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु वहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, वशिष्ठ जी थे, तो गुरु वहाँ आ गए गौशाला में और देखा ये तो गाय की हत्या हो गई है, वध कर दिया पसंगरा ने। तब तुरंत वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दे दिया कि तम शाप कुलाचार्य कृता के सम कामत नक्षत्र बंधु शूद्रश्य कर्मणा भवता मुना। साप क्या दिया कि तुम क्षत्रिय से, तुम्हारा जो धर्म है क्षत्रिय का गाय का रक्षा करना, वो तुम कर नहीं पाए ठीक से, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म शूद्र हो जाए, तुम शूद्र योनि प्राप्त करोगे, ऐसा साप दे दिया श्री वशिष्ठ जी ने। और ऐसा और तुमने जो काम किया है वो बहुत महापाप है, क्योंकि तुमने गाय का वध कर दिया है। तो पसंगरा ने अपना गलती, यद्यपि उनका कोई दोष नहीं था इसमें, पूरा अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में उसने तलवार चलाई और गाय का वध हो गया, बिल्कुल अनजाने में उसका कार्य हुआ था, फिर भी उनका उनको उस पाप का उनको फल भुगतना पड़ा और उनको वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया। और पसंगरा प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर वो श्राप को स्वीकार किया वशिष्ठ जी का, और वहां से सर दिया, फिर भगवान के भजन में वो लग गए। कहने का तात्पर्य यही है इस प्रसंग से मैं पता चलता है कि गाय की रक्षा के लिए अब राजा, जो पूरे पृथ्वी के राजा थे मनु महाराज, उसने किसको दी वो सेवा, अपने ही पुत्र को। ज्यादा करके राजा का कहीं कहीं प्रधान और कहीं कहीं सैनिक होते हैं रक्षा के लिए, फिर भी वो जिम्मेदारी अपने पुत्र को दी, और पुत्र ने भी कैसी उस रक्षा के लिए अपना जीवन लगाया, विरासन दिन रात बिना नींद किए वो रक्षा कर रहे थे, और उसमें भी ये गलती हो गई अनजाने में, फिर भी उनको उस गुरु के द्वारा उसका जो भी हो उनको प्रायश्चित करना पड़ा जो पाप लगा हुआ। तो अभी हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कितनी गायें करती हैं, तो उस एक गाय के लिए उतना जो कष्ट सहन करना पड़ता है, तो एक गाय के जो रोज रोज लाखों लाखों गाय कटती है, तो उनके लिए समाज को कितना कष्ट भुगतना पड़ता है, उसमें साथ साथ जो हमारे शासन करता है उनको भी दुख भोगना पड़ता है, और साथ साथ में जो प्रजा है उनको भी उनका कष्ट सहन करना पड़ता है, क्योंकि जो राजा होते हैं, राजा जो पापी होते हैं उनका पाप उनको प्रजा में भी लगता है, कई ऐसे सारे प्रसंग भागवत में भी है। तो इसी तरह जो राजा है उनका पाप है वो प्रजा को भुगतना पड़ता है, और इस वर्तमान समय में लोग कितने गाय काटते हैं और उनका जो भी पाप लगता है वो समाज को, फिलहाल हम देखते ही है कि कितना भी प्रयास करें समाज सभ्यता की तरफ जाने के लिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दुर्गति की ओर ही धकेला जा रहा है, कितना भी प्रयास करने के बाद भी कहीं कहीं सारे आविष्कार करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन वही चीज दुख का कारण बनता है, क्योंकि गाय की रक्षा नहीं हो रही है, और साथ साथ में जो गाय के लिए जो चराने के लिए उनको घास की आवश्यकता है, वो पहले बहुत जगह पड़ी रहती थी, लेकिन अभी इतना इतना बिल्डिंग बन रही है, कुछ जंगल नहीं बचे, कुछ चराने के लिए कुछ भूमि भी नहीं बच रही है, क्योंकि ये सब मानव समाज सोचते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दुर्गति हो रहा है समाज का। तो इसी तरह इस श्री वसुदेव जी कहते हैं कि आप जिस स्थान पर रह रहे हो वो उस स्थान पर पर्याप्त है ना, ये जल तृण गुल्म आदि सब, क्योंकि पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चीज है। और साथ साथ में श्री चैतन्य चरितामृत में भी इसी तरह प्रसंग पाया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु महानगर संकीर्तन जब प्रथम बार निकाले तो उस महानगर संकीर्तन के प्रभाव से वहाँ के जो ब्राह्मणों आदि सब थे वो महाप्रभु से कई लोग आकृष्ट हुए और कई लोग नाराज भी हुए। और उसी समय वो मुसलमान का शासन था नवभूषण शाह का, तो कई लोगों ने विरोध भी किया कि इसी तरह ये निमाय संकीर्तन आंदोलन करता रहेगा तो हमारे लिए भी ये खतरनाक साबित होगा। तो उस काजी ने ऐलान किया कि आज के बाद ये नगर संकीर्तन नहीं करेगा और एक बार जाकर जो श्रीवास वो सब शिवराज पंडित नगर संकीर्तन कर रहे थे उसका मृदंग भी तोड़ दिया था उन यवनों ने। तो उस फिर महाप्रभु क्रोधित हो गए जब ये आंदोलन रुकवाने का साहस किया उस काजी ने, तब फिर एक महानगर संकीर्तन निकाले रात को चैतन्य महाप्रभु कि हम उस काजी के घर पर जाएंगे आंदोलन करेंगे। तो पूरा मिसाल लेके सारे भक्त और श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं वहाँ कि कहीं देवताओं भी उस नगर संकीर्तन में शामिल हुए, लाखों लाखों लोग आ गए थे, देवताओं साथ में थे। तो इसी तरह वो वहाँ लेकर नगर संकीर्तन लेकर श्री काजी के वहाँ पहुँचे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उतना बड़ा जन समूह देखकर वो काजी घबरा गए और वैसे ही उनको रात में सपने में आया था नरसिंह भगवान, तो घबरा हुआ था ही, तो घबरा गए थे। और इतना जन समूह देखकर और चैतन्य महाप्रभु आगे कीर्तन कर रहे थे और उनके महल के सामने ही खड़े हो गए और चैतन्य महाप्रभु सबको बोला बाहर रुकिए मैं अंदर जाता हूँ। और काजी तो पूरा डर के मारे छुप गए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए अंदर और काजी तुरंत उनके चरणों में गिर गए, फिर कहने लगे मैं आपके मामा के गांव का हूँ, तुम मेरे भांजा हो, वैसे वो संबंध दिखाने लगे उनके बसने लगे उसने चैतन्य महाप्रभु से। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप डरिए मत, मेरी जो बात है आप सुनिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे प्रश्न लागी आयलाम तुम्हार स्थान है, मेरा एक प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर मैं आपके स्थान पर आया हूँ, उस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। तब काजी कहते हैं काजी कहे आज्ञा कर जे तुम्हार मने, अब आज्ञा कीजिए तुम्हारे मन में जो बात है वो कहिए, मैं उनका निवारण करने के लिए तैयार हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु कहे गो दुग्ध खावो गाभी तुम्हार माता। चैतन्य महाप्रभु की दू चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो तुम गो दुग्ध जो गाय का दूध पी रहे हो वो वास्तव में गाय हमारी माता है या तुम्हारी माता है। और साथ साथ में कहा ऋष अन्न उपजाए ताहे ते हो पीता, और गाय हमारी माता है क्योंकि हम उसे दूध पीते हैं और ऋषभ जो बैल है वो अन्न उपजाते हैं, तो अब अन्न उपजाने के कारण वो हमारे पिता है। तो गाय हमारी माता है और पिता ऋषभ या बैल हमारे पिता है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पिता माता मारी खावो ये वा कौन धर्म, ये हमारा पिता है और माता है और तुम लोग उनको मार कर ही खाते हो तो कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म का तुम पालन करते हो। कौन बल कर तुम्हें यही मत विकर्म, कौन शास्त्र में ऐसा कहा है कि तुम ऐसा विकर्म करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो गाय हमारी माता है ऋषभ हमारे पिता है उनको मारकर तुम खा रहे हो, कौन सा शास्त्र में बोला है, कौन शास्त्र में लिखा है ऐसा करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो हमारे साक्षात बजेंद्र कुमार इस भौतिक जगत में शिक्षा देने के लिए पधारे हैं, शिक्षा अर्थ जीवों के शिक्षा देने के लिए जो इस भौतिक जगत में आए इस कलयुग में, तो वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है और ऋषभ हमारे पिता है और उनको खाकर आज लोग इतने उनको वध कर कर के खा रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये वैज्ञानिक जो हम अभी वैज्ञानिक का जो तांडव है समाज के ऊपर नए नए आविष्कार निकाल रहे हैं तो उसी का ही परिणाम समाज को भुगतना पड़ता है। आज से 50 साल पूर्व आप पीछे जाइए तब इस पशुओं की क्या महत्व थी उस बात को हम जान सकते। 50-40 साल पूर्व भी आप जाइए, तभी जब गाय और वृषभ बैल जो चैतन्य महाप्रभु ने पिता कहा है, उस ऋषभ ने बैल के जो पहले के समय में खेती में कितनी आवश्यकता थी, वो जो खेती की है वो जानते होंगे, तो उनके बिना बैल के बिना खेती हो ही नहीं सकती थी पहले, आज से 40-50 साल के पूर्व, क्योंकि हर चीज बैल के ऊपर निर्भर रहता था, खेती करना या कूप से पानी निकालना और जो भी, यहाँ तक के पहले के समय में जब एक गांव से दूसरे गांव पर बारात लेकर जाना था तभी उस बैलगाड़ी में बारात जाती थी 40 साल पहले बैलगाड़ी में लेकर बारात जाती थी। और जो पशुओं को पालन करते थे, जो गाय और बैल को पालन करते थे, वो बैल को अपने परिवार के सभ्य की तरह उनका पालन होता था। और इसी तरह आज के समय में हम देखते हैं कितना परिवर्तन हो गया है, और इसका कारण है ये नए नया आविष्कार। श्रीधर महाराज इसी मंदिर में भागवत क्लास देते हुए कहा था, इसे ऐसा टॉपिक था उस समय, श्रीधर महाराज उसने कहा था कि ये ऋषभ की कितनी आवश्यकता थी उसी समय। और फिर बाद में जो ट्रैक्टर निकले, ट्रैक्टर है वास्तव में राक्षस है, श्रीधर महाराज कहें वो राक्षस है, क्योंकि ट्रैक्टर से जैसे जैसे ट्रैक्टर आते गए समाज में, और वैसे वैसे बैल की आवश्यकता कम होने लगी, क्योंकि ट्रैक्टर से ही सब खेती करने लगे। और प्राय आज देखा जाए तो 99% खेती ट्रैक्टर से होती है और बैल का कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ट्रैक्टर को राक्षस कहा गया है क्योंकि जड़ है फिर भी वो काम करता है राक्षस की तरह, क्योंकि एक ट्रैक्टर से 200 बीघा जमीन रहेगी तो उससे वो आराम से खेती कर सकता है। लेकिन पूर्व 40-50 साल के पहले जो ट्रैक्टर नहीं थे, तब जो खेती करते थे वैश्य के पास कम से कम 4 बैल रहते थे, ऋषभ 4, क्योंकि जो खेत रहता था उसमें उतना भी परिश्रम उनको नहीं देते थे बैल को। सुबह लग गया उसको खेत जोतने के लिए तो दोपहर हो गया तो दोपहर को उनको छोड़ देते थे और दूसरा जो 2 बैल रहते उनको लगाते थे। तो वो जानते थे कि वो हमारे जब तक इतनी देखभाल हम नहीं करेंगे तब तक हम उनके बिना हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसका इतना देखभाल किया जाता था एक सभ्य की तरह, एक परिवार का सभ्य। और उनका जो बूढ़ा हो जाता था, तब अभी तो बूढ़ा हो गए तो कत्ल खाने में भेज देते थे, लेकिन उस समय उस बैल को बूढ़ा होने के बाद और अच्छी तरह से उनका देखभाल किया जाता था। आजकल तो माता पिता को भी बूढ़ा होने के बाद वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, लेकिन उसी समय बैल को भी इतनी सुविधा देते थे, बूढ़ा होने के बाद बहुत देखभाल करते थे। तो ऋषभ की कितनी आवश्यकता है थी पहले और आज के समाज में, आज के समय में बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। और इसी के कारण जो बैल है, ऋषभ है, उनको कत्ल खाने में जपराए भेजा करते हैं। तो उनका जो भी हो इस मनुष्य समाज में कितना प्रभाव गहरा पड़ता है, बाहर से दिखता नहीं है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सभी मनुष्य प्राय दुखी जैसे लगते, कितना भी प्रयास करे देखा जाता है। पशुओं को भी आराम करवाते थे, सुबह लगाया खेत में दोपहर को छोड़ देते थे, लेकिन आज के समाज में मनुष्य 12-12 घंटा सर्विस करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, 14-14 घंटा पशु के बदतर भी उनका जीवन हो गया है। और वो सोचते क्या है कि हम सुखी हैं, और सुखी होने का उसको कैसा लगता है कि मैं सुखी हूँ, उनके पास एक प्लेट होगा और एक 4-5 लाख रुपये की गाड़ी होगी और वो सोचता हो कि मैं सुखी हूँ, और वास्तव में वो जाता है किसमें, ट्रेन में धक्का खा कर। और हफ्ते में एक संडे के दिन उस गाड़ी को लेकर वो परिभ्रमण करता है अपने परिवार के साथ 1-2 घंटा और वो सोच लेता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वास्तव में 1 घंटे के लिए वो कितना परिश्रम, कितना अपना आयुष वो गंवा रहा है उसको उसका अंदाजा नहीं है। प्रभुपाद दिखाया है तात्पर्य में कि मनुष्य समाज को चाहिए इस दुर्दिशा के और जा रहे हैं उसे पशुपालन करना चाहिए। तो इतना महत्व है पशुओं का, जो आज से 50 साल पहले देखा जाए हमारे पूर्वज थे वो कहते हैं, और हमने भी थोड़ा बहुत देखा है इस समय को, और आज पूरा परिवर्तन हो गया है, क्योंकि कोई देखभाल नहीं करते पशुओं की। और गाय भी जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं, फिर बाद में बेच देते हैं कसाई को, और कसाई उसको काट देते हैं। तो ऐसा प्राय समाज में होता है। और एक बार विष्णु कुमार प्रभु कहते हैं कि उनके गांव के बाजू में एक गौशाला थी, बहुत बड़ी गौशाला है उधर, तो उनका जो ट्रस्ट थे वही गांव को कसाई घर में बेचते थे, वही जो ट्रस्टी थे वही जो रक्षा करने वाले थे वही गाय को ट्रक भर भर के वो कसाई घर में बेचते थे। समाज का कितना दुर्दिशा और परिवर्तन है इस बात से हमें पता चलता है। तो उस जब तक जब उनको पकड़ा गया, जब वो ट्रक में भरकर गाय जा रही थी, तो वो सलाने वाला मुसलमान था, और पुलिस वाले ने पकड़ा, तब उनको कहा कि तो गाय है कहाँ लेकर जा रहे हो, क्योंकि वो बोला मुसलमान कि हम इस गौशाला से उस गौशाला में लेकर जा रहे हैं। तब उस पुलिस वाले ने पूछा ये कौन आपको बोला इधर से उधर ले जाने के लिए, क्योंकि उनको शंका हो गए कि मुसलमान चला रहा है ट्रक, उसमें कुछ गड़बड़ है। तब इंक्वायरी किया, तब पता चला उसको मारा थोड़ा यवन को, तब उसने बता दिया कि जो ट्रस्टी है उसका नाम बताया था प्रभु जी ने, उस ट्रस्टी ने हमको यह कार्य में लगाया है। और कहा कितने गाय भेजी, तब वो बोला कि प्राय हम 10,000 गाय तक वहाँ भेज दिया कसाई खानों में, 10,000 गाय उसने जो ट्रस्टी थे उसने भेज दिया कसाई घर पर। तो इसी तरह गाय की रक्षा के बहाने, गाय की रक्षा के हेतु प्राय लोग ऐसा बिजनेस भी करने लगे हैं, और लोग गाय के नाम पर बहुत बहुत दान डोनेशन देते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी समाज करते हैं, क्योंकि इसी कारण सभी का मन है, बुद्धि है, तमोगुण से आवृत हो गया है। सही क्या है, गलत क्या है, कुछ सोचने का उनको विचार ही नहीं है। शास्त्र की बात को छोड़िए, रजोगुण भी उनका प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि तमोगुण के आवृत हो गए प्राय समाज। तो इसी तरह मनुष्य जब तक पशु की देखभाल नहीं करेगा, तब तक इस समाज में कितना भी प्रगति करने का प्रयास करे या सुखी होने का प्रयास करे, वो कभी सुखी हो नहीं पाएगा। क्योंकि खास करके जो गाय है, वो चैतन्य महाप्रभु तक कहे हैं, और प्राय ने देखा कि इतना उनका रक्षा के लिए कितना प्रयास किया जा रहा था, तो उस गाय की रक्षा के लिए आज कोई नियम कानून नहीं है, और गवर्नमेंट सरकार उनको परमिशन दे रहे और कत्ल खाना खोला जाए। और विदेशी में तो प्राय वैसे थोड़े थोड़े दूरी पर एक बड़े बड़े शटर हाउस होते हैं कि जहाँ गायें करती है, लेकिन वहाँ तो कुछ सभ्यता है ही नहीं, प्राय आसुरी समाज जैसा ही वहाँ है। लेकिन भारत में भी आज वही स्थिति हो गई है, क्योंकि इतनी गायें करती है तो उनका जो भी मांस आदि चमड़ा जो भी उनसे निकलता है उनका यूज होता है, तभी तो इतना करता है ना समाज में, हम ही लोग उनको इस चीज़ को उपयोग करते हैं। तो इसका डिमांड होने के कारण उनका बिजनेस और करने के लिए, और या गवर्नमेंट उनको परमिशन दे रही है कि जब तक हम उन चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे तब तक और गायों की हत्या या वध होता रहेगा। तो इसलिए श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं, श्री नंद महाराज, कि आप जिस स्थान पर अभी रह रहे हो उस स्थान इस जल से या तृण से गुड़ुम से या पर्याप्त मात्रा पे है ना, क्योंकि जब तक घास और ये जल पर्याप्त नहीं रहेगा तब तक पशु सुख से नहीं रह पाएंगे। और ब्रज का तो कहना है क्या, यहाँ तो पर्याप्त है ही था ही, क्योंकि यमुना वहाँ बहती है, गिर गोवर्धन है, और ये महावन जहाँ वृंदावन का सबसे बड़ा 12 वन में से महावन सबसे बड़ा वन है, वहाँ श्री नंद महाराज का निवास था। तो उस निवास में तो सब पर्याप्त थे, घास जल वो सब, और गाय की रक्षा पूर्ण रूप से श्री नंद महाराज करते हैं। और गाय प्राय देखा जाता है भगवान को भी बहुत प्रिय है, यहाँ तक गोकुल में और जहाँ नित्य धाम भगवान का गोलोक धाम में, वहाँ भी करोड़ों करोड़ों कामधेनु या सूर्य गायों भगवान पालन करते हैं, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर का वही कार्य है, गायों का पालन करना और बांसुरी बजाना। तो इसी तरह जब भगवान प्रथम बार गौचारण के लिए निकले बछड़े को चराने के लिए, तब यशोदा मैया ने उनको जूता दिया भगवान को कि आप ये जूता पहनकर गौचारण के लिए जाओ। तब भगवान ने कहा गाय की रक्षा के लिए कि जब गौ के पाँव में जूता नहीं है तो मैं जूता नहीं पहनूंगा, अगर मुझे पहनाना है तो आप हमारे पास जो 9 लाख गाय है तो 37 लाख आप जूता बनवाइए ताकि उनको पहनाइए, फिर बाद में मैं पहनूंगा। ऐसा भगवान गाय को रक्षा के लिए, और वास्तव में भगवान का नाम ही गोपाल हो गया क्योंकि गाय का पालन पूर्ण रूप से करते थे। और साथ साथ में देखा जाए तो गाय भी भगवान के लिए इतना भी प्रयास उनको सुख देने के लिए करते हैं। जब गायों ने सुना कि हमारे जो प्रिय, हमारे जो प्रभु हैं, उन्हें हमारे लिए अपने पाँव में, अपने चरणों में जूता पहनने का मना कर दिया, तो हमें भी कुछ, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम कुछ करें। तो सभी गाय मिलकर जहाँ स्थान से जहाँ चलने का रास्ता था वहाँ अपना पाँव पछाड़ने लगे उसी रास्ते पर, सब जगह पर। तो इतना पछाड़े पाँव गए हैं, सब 9 लाख गाय लग गई उस कार्य में। तो छोटे छोटे जहाँ कंकर और मिट्टी का थोड़ा थोड़ा इतना इतना वो कंकर जैसा था, वो पाँव पसार पसार कर वो चूर्ण कर दिए एकदम। अभी भी हम देखते हैं कि व्रज में जब रज रज है वो एकदम पाउडर से भी कोमल है। तो पाउडर से कोमल होने का कारण क्या है कि गौ ने इसी तरह अपना पाँव पसार पसार कर वहाँ उस स्थान को ऐसा मुलायम बना दिया नरम, ताकि हमारे श्याम सुंदर, हमारा प्रिय प्रभु वहाँ से विसरण करें, ताकि उनके सर पर कुछ, उनके शरणों में कुछ कंकर या तीर्ण या कुछ लगे नहीं। तो इसी तरह जिस तरह भगवान गायों के लिए जिस रक्षा करते हैं, उसी तरह भगवान का भी उनके जो प्रभु है गायों के, पूरे ब्रज के प्रभु है, उनका देखभाल भी, देखरेख भी गायों ने किया। उसी तरह देखते हैं हम आज ब्रज में पूरे 84 कोस में जाएंगे तो वहाँ की जो रज है एकदम पूर्ण रूप से चूर्ण है, पाउडर की तरह एकदम मुलायम, एकदम मुलायम। जहाँ भगवान चलते हैं तो उनको चरण में कुछ चोट या कुछ लगता नहीं है। तो इसलिए पूर्ण रूप से भगवान जब ब्रज में विहार किए 11 साल तक, तब तक एक भी प्रसंग ऐसा नहीं आया कि भगवान के चरणों में कुछ कंकण या कांटा लगा। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी 12 साल के वन में गए, तब प्रसंग आता है कि भगवान के, राम के चरणों में कांटे कहीं लगे थे, वह खून भी निकला था। लेकिन जब भगवान कृष्ण ब्रज में 11 साल तक परिभ्रमण किए, तो भी ऐसा प्रसंग नहीं है कि भगवान के चरणों में कुछ लगा, क्योंकि गाय ने ऐसा उधर वो स्थान ऐसा बना दिया था। तो इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि इस पशुओं की रक्षा के लिए श्री वसुदेव जी जो कहते हैं कि तूर्ण गुड़म जल आदि जो है वो पर्याप्त है ना, लेकिन आज के समय में पशु के लिए कुछ पर्याप्त नहीं है। जो पशु का चीज है वो भी मनुष्य खा जाते हैं, और उनको काट कर भी खा जाते हैं। घास सारा खा गए ना कोई नेता, जो पशुओं का घास था वो पूरा बेच कर वो खा गए, और साथ साथ में पशु को भी काट कर वो खा जाते हैं। तो इस दिशा को देखकर मनुष्य समाज चाहे कि हम सुखी हो या कुछ अपना जीवन आनंदमय या सुखीमय सुखमय बिताए, तो कभी हो नहीं सकता। अगर अंधेरे में कोई सोचे कि मैं अंधेरे से कैसे पार हो जाऊँ, अपने आप प्रयास करेगा तो कभी पार नहीं होगा। तो इसी तरह जब तक हम शास्त्र, गुरु और साधु की बात अपने जीवन में नहीं उतारेंगे या समाज नहीं उतारेंगे, तब तक इस दुर्दिशा से समाज का उद्धार कभी होगा नहीं। तो इसी तरह इस प्रसंग को श्री वसुदेव जी कहते हैं नंद महाराज को कि आप जिस स्थान पर रहते हो वो कुशल है ना, और साथ साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि निरोगी है ना। आज तक तो आजकल मनुष्य मिलते तो पूछते नहीं है कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन वसुदेव जी ने पूछा पशुओं के लिए भी कि सब पशु निरोगी है ना, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं रहेगी तब तक पशु निरोगी या स्वस्थ नहीं रहते। तो इसी तरह वसुदेव जी ने पूछा नंद महाराज से, तो सब कुशल हैं और सब निरोगी है ना, जब तक पशु निरोगी रहेंगे कुशल रहेंगे तब समाज अपने आप कुशल और आनंदमय रहेंगे, और जब पशु नहीं सुखी है तो समाज भी सुखी नहीं है। तो इस तरह श्री वसुदेव जी नंद महाराज से पूछे। फिर बाद में अगले श्लोक में देखेंगे, फिर बाद में यशोदा के बारे में, फिर बलराम के बारे में वसुदेव जी पूछेंगे, लेकिन प्रथम उसने पूछा कि पशु आगे सब कैसे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद की कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त होता है श्रवण करने का और कुछ गायों की सेवा करने का। तो प्राय इस बॉम्बे जैसे शहर में हम चाहें भी तो किस तरह गायों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रयास कर सकते हैं हम कि जो गायों का प्रोडक्ट है, जो गाय से उत्पन्न होता है, पंश गैव्य से जो चीज़ बनता है, उनका अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण करना चाहिए। गायों की हर चीज़ मनुष्य के उपयोगी है, पंश गैव्य, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोबर और गौमूत्र, इसको पंश गैव्य कहा जाता है। तो गाय का ये पंश गैव्य चीज़ मनुष्य के लिए बहुत आवश्यकता है। यहाँ के सारे युग में यज्ञ करने का जो अलग अलग युग में कृत्य धाय तो विष्णु, त्रेता युग में यज्ञ करने की विधि थी, तो उसी समय ये पंश गैव्य की जरूरत थी, क्योंकि जब तक गाय का गोबर का लेपन नहीं होता, गाय का दूध नहीं होता, गाय का घी नहीं होता, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो हर युग में गाय की इतनी महत्व है, लेकिन कलयुग में महत्व होते हुए भी प्राय सब लोग तमोगुण के कारण उस महत्व को नहीं जानते हैं और अपना अधोगति की तरह मनुष्य समाज अपना संस्कृति खो रहे हैं। तो ये पशु वध के कारण हो रहा है। तो प्रभुपाद का ये एक इच्छा था कि वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण रूप से स्थापना हो, तो जब वर्णाश्रम धर्म का स्थापना होगा तब यह पशु को पालन उसमें साथ में थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, और जब तक पूर्ण रूप से स्थापना हो जाएगी तो पशु का पालन उसमें आ जाएगा। तो प्रभुपाद की ये पूर्ण इच्छा थी कि वर्णाश्रम धर्म का पालन हो। तो इसी तरह श्री वसुदेव नंद महाराज का संवाद चल रहा है और आगे भी हम श्रवण कर सकेंगे। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो इस बारे में हरिदास प्रभु से पूछिए, क्योंकि वो गाय के बारे में वधारे जानते हैं। उसका आंसर जवाब आपको भी देना पड़ेगा। दोनों होना चाहिए ना, और उसका ठीक तरह से तो आप ही जवाब देंगे, लेकिन मैं तो जो सुना हूँ वो बताएंगे। दोनों होना, जब तक ब्रह्मचारी जीवन या बालक बचपन से उनको 25 साल तक उनको ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तब तक वो गृहस्थी में ठीक से अपना पालन गृहस्थी जीवन पालन नहीं कर पाएगा, और ठीक से गृहस्थी जीवन पालन नहीं कर पाएगा तो वानप्रस्थ तो सवाल ही नहीं उठता है और संन्यास तो दूर बात रही। आज के समय में तो वानप्रस्थ भी नहीं है, संन्यास गृहस्थी भी ठीक से नहीं है, गृहस्थी भी गृह मेधा हो गए सब, गृहस्थी में आसक्त हो गए।
गाय का ये और बूटा बूटा सब खाते हैं, दोष किसको दे, क्या करें?
प्राय जितने भक्त बैठे हैं ना उसे सबसे सीनियर भक्त श्री हरिदास प्रभु है, क्योंकि उसने प्रभुपाद का संग भी थोड़ा बहुत प्राप्त किए हैं। तो आपका जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो अभी वर्तमान हो रहा है उनका पूर्ण रूप से आंसर या जवाब श्री हरिदास प्रभु ही दे सकते हैं।
हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, आज समाज इतना पतित हो गया है, जैसे एक बच्चा नर्सरी में, उसको आप सीधा 11वीं कक्षा का सबक सिखाओ, ना तो 11वीं कक्षा का सबक सीखेगा और ना तो वो नर्सरी का सबक, वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, पथभ्रष्ट हो जाएगा। आज समाज इतना पथभ्रष्ट हुआ है, अंग्रेज लगभग ज़्यादा लोग इस देश में जानते हैं, और अंग्रेज के माध्यम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस आचार्य हैं, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को आप अंग्रेज में इनका प्रचार करो। तो आचार्य जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आचार्य ने कहा कि अंग्रेज में प्रचार करो, ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा लें। ये बात नंबर एक हो गया। दूसरी बात, आज अगर हमको सभी को वैदिक बनाना है, हमको वैदिक नहीं धार्मिक नहीं हमको आध्यात्मिक बनाना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है हरे कृष्ण महामंत्र का खूब प्रचार हो। यही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो रहा है कि आज हम लोग गाय का महत्व जान रहे हैं। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र ना होता या प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण ना होता, हम ना तो गाय को मानते, यहीं पे पैंट शर्ट पहन के हम ही इन चीज़ों को खाए पिए भी होते। तो हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी हो गई गाय के महत्व क्या है, ये इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत प्रचार किया, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का सप्ताह चल रही है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करें। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार नहीं करेंगे, हम कितने भी गाय के बारे में बताएं, लोग इस कान से सुनेंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि गाय का महत्व तब समझेगा जब हृदय में दया होगा, और दया नहीं होगा तो हम कितने भी संस्कृत बात करें, कितने भी गाय के बारे में बात करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहली बात, चैतन्य महाप्रभु ने इस युग का, इस पतित अवस्था का, कलयुग का जो जो अवस्था है उसे देखकर महत्वपूर्ण काम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। ये जितना प्रचार होगा तब लोगों के अंदर दया उत्पन्न होगा, और जब दया उत्पन्न होगा तब गाय का महत्व समझ में आएगा, नहीं तो कोई गाय का महत्व हमें पता नहीं लगेगा। आज हम बताएं हम ही में से कितने लोग हैं जो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जब जब हुआ तब पैंट शर्ट उतरा और धोती कुर्ते में आए। आज हम सबको चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी तरह से जप करें, औरों से जप करा के लें। जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा, ये युग धर्म सबके हृदय में दया उत्पन्न करेगा, और ये दया जब आएगा तो अपने आप गाय का महत्व पता चलेगा। हरे कृष्ण।
श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद,
ये जो चर्चा है हम लोग है एकदम केजी क्लास में, और वो बात करते हैं चौथे क्लास में।
ये जो कथा कथा था कि वो गाय ने चूर्ण बनाया, ये कौन से उसमें गंध मिलता है?
गोपाल संत में
किसने?
गोपाल संत दिल्ली के, दिल्ली के यात्रा एक वृंदावन
हाँ
पिछले कार्तिक में उसमें वो ड्रामा था।
अच्छा,
दिल्ली के पूरा 5000 भोग पाए थे उसमें वो ड्रामा किया।
गोपाल तो गोपाल गोपाल
पता हो गया ड्रामा बहुत सुंदर हुआ था,
सुंदर लगा सुन के। चूर्ण बनाया है वो भी बहुत मुलायम रहती है उधर, बहुत इतना सॉफ्ट रहती है। गोपाल चंपू में वो चूर्ण बनाने वाला गा पत्थर को चूर्ण बनाया।
अरे इतने लोग पड़े
और क्या,
बाहर साइड में जो कबाट रखा है ना
इसमें
देखा
नहीं था,
उसी में
रखते हैं। और वगैरह की 8 बजे 7 बजे
मुंबई ऊपर है ना?
हाँ मुंबई ऊपर है।
ये नंबर कहाँ
है? ये दम टेम्पल की है। और टेम्पल तुमने पकड़ चुका है?
हाँ ये
कहीं नहीं रहा है, खाली नवा है, दोबारा
Yeah. Thank you. दादा कहाँ गए?
हाँ माता जी प्लेट मिल जाएगा
पूरा
ले लो
क्या वो 10 रुपए का एक खतरो
अच्छा
10 रुपए ये है बहुत महंगा प्लेट टच कर लूँ 10 रुपए की प्लेट और बहुत महंगा है अरे ये इधर वो मुझ में चबाती तीन यहाँ से
स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रहती। उसके जीवन के तीन चरण होते हैं। बाल्यावस्था में स्त्री अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए।
प्रसार
उनके बाणों का लक्ष्य इतना अचूक था कि जरासंध के हाथी या तो पैदल सैनिक अतिशीघ्र मारे गए। श्री कृष्ण की अनवरत बाण वर्षा ऐसी प्रतीत होती मानो एक प्रज्वलित अग्नि बवंडर हो जो जरासंध की सेना का वध कर रहा था। जब श्री कृष्ण ने बाण छोड़े तो हाथियों के सिर बाणों से कट गए और सभी हाथी धीरे धीरे गिरने लगे। उसी प्रकार सभी अश्वों की गर्दन कटने लगी, वे गिर पड़े। ध्वज सहित सारे रथ भी गिर गए, रथ पर सवार योद्धा तथा सारथी भी गिर गए। लगभग सभी पैदल सैनिकों के सिर हाथ और पैर कट गए थे, युद्ध भूमि में गिर गए थे। इस भांति कई सहस्त्र हाथी सैनिक तथा घोड़े मारे गए और उनका रक्त नदी की धारा के समान प्रवाहित होने लगा। उस नदी में सैनिकों की कटी हुई भुजाएं सर्प के समान प्रतीत होती थी, उनके सिर कछुए के समान और हाथियों के मृत शरीर छोटे छोटे दीपों के समान प्रतीत होते थे। मृत अश्व सार्क मछलियों के समान प्रतीत होते थे। भगवान की इच्छा से वहां युद्ध सामग्रियों से पूर्ण रक्त की एक महान नदी बह रही थी। पैदल सैनिकों के हाथ पैर विभिन्न मछलियों के समान और उनके केश समुद्री धरपतवार के समान दलदल के समान तैरते तैर रहे थे। सैनिकों के तैरते हुए धनुष नदी की तरंगों के समान प्रतीत होते थे। सैनिकों तथा सेनापतियों के शरीरों के आभूषण रक्त नदी में बहते हुए कंकड़ों के समान प्रतीत होते थे। संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध बलराम जी अपनी गदा से इतनी वीरता से युद्ध करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा निर्मित रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। जो कायर थे इस भयंकर और विराट विकराल दृश्य को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए और जो सूरवीर थे वे प्रसन्नता पूर्वक दोनों भाइयों के शौर्य के विषय में परस्पर चर्चा करने लगे। यद्यपि जरासंध के पास सैन्य शक्ति का एक विशाल सागर था तथापि बलराम जी तथा भगवान कृष्ण ने युद्ध को पूरी स्थिति को सामान्य युद्ध से कहीं बढ़कर एक भयंकर दृश्य में परिवर्तित कर दिया। वाह, साधारण मस्तिष्क वाले व्यक्ति सोच भी नहीं सकते कि यह किस प्रकार संभव हुआ। किंतु जो इन गतिविधियों को श्री भगवान की लीला मान ले, जिनकी इच्छा से प्रत्येक वस्तु संभव है, तब यह बात समझी जा सकती है। श्री भगवान अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना पालन तथा संहार करते हैं। उनके लिए शत्रु से युद्ध करते हुए विनाश का इतना विशाल दृश्य निर्मित करना कोई अद्भुत घटना नहीं है। किंतु फिर भी चूंकि श्री कृष्ण तथा बलराम जी जरासंध से साधारण मानव की भांति युद्ध कर रहे थे, अतः यह घटना अद्भुत प्रतीत हुई। जब जरासंध के सैनिकों का वध हो गया और वह अकेला ही जीवित बचा था तो निश्चित रूप से उस समय वह अत्यंत निराश हो गया। जिस प्रकार एक सिंह महान शक्ति से दूसरे सिंहों को पकड़ता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने तत्काल उसे बंदी बना लिया। किंतु जब वे जरासंध को साधारण डोरी तथा वरुण पास से बांध रहे थे, तब भविष्य की एक अन्य बड़ी योजना का विचार करके श्री कृष्ण ने उनसे कहा, जरासंध को बंदी न बनाए। तदनंतर श्री कृष्ण ने जरासंध को मुक्त कर दिया। जरासंध महान सूरवीर योद्धा था, अतः इस पराजय से वह अत्यंत लज्जित हुआ और उसने निश्चय किया कि अब वह राजा का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, अपितु अपने राजा के पद का त्याग करके वन में जाकर कठोर संयम तथा तपस्या करते हुए ध्यान का अभ्यास करेगा। जब वह अपने अन्य मित्र नृपों के साथ घर लौट रहा था, तब उन्होंने उसे संन्यास न ग्रहण करने की मंत्रणा दी। उन्होंने उससे कहा कि वह निकट भविष्य में श्री कृष्ण से पुनः युद्ध करने के निमित्त शक्ति एकत्र करे। जरासंध के मित्र राजा उसे उपदेश देने लगे। सामान्यतः यदु राजाओं की शक्ति उसकी पराजय संभव नहीं थी, किंतु उसकी जो पराजय हुई थी उसका कारण केवल उसका दुर्भाग्य था। राजाओं ने जरासंध को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उसका युद्ध कौशल निश्चित रूप से शौर्यपूर्ण था, अतः उसे अपनी पराजय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसकी पराजय के कारण उसके विगत कर्म थे, उसके युद्ध कौशल में कोई दोष नहीं था। इस प्रकार मगध देश के राजा जरासंध अपनी समस्त शक्ति खोकर और बंदी बनाए जाने तथा उसके पश्चात मुक्त किए जाने पर अपमानित होकर अपने राज्य लौटने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जरासंध की तुलना में श्री कृष्ण की सेना छोटी सी थी, फिर भी सेना की अल्प मात्र भी क्षति नहीं हुई, जबकि जरासंध के सभी सैनिक मारे गए। उस समय स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान का यशगान उन पर पुष्प वर्षा करके उनको प्रणाम करने लगे और उन्होंने इस विजय की अत्यंत प्रशंसा की। जरासंध अपने राज्य को लौट गया और इस प्रकार मथुरा नगर पर निकट भविष्य में आक्रमण का भय नहीं रहा। मथुरा के नागरिकों ने व्यवसायिक गायकों जैसे शुद्ध मागधों तथा सुंदर गीतों की रचना में पटु कवियों के सम्मिलित गान का आयोजन किया। वे कवि तथा गायक श्री कृष्ण के विजय का यशगान करने लगे और विजय के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया तो उनके सुरही संग तथा दुमदुमी बजने लगी। विविध वाद्यों जैसे धैर्य तुर्य वीणा मुरली तथा मृदंग की सम्मिलित ध्वनि ने उनका सुंदर स्वागत किया। श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश करते समय समस्त नगर अत्यंत स्वच्छ किया गया था और विभिन्न गलियों तथा पथों पर जल छिड़काव किया गया था। नगर निवासी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने घरों तथा अपनी दुकानों को कागज की रंगीन पट्टियों से सुसज्जित किया था। अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने चौराहों तथा गलियों पर द्वारों का निर्माण किया था। सुंदरता से सज्जित मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के उल्लासित भाव से प्रवेश करने के समय मथुरा की नारियों तथा कन्याओं ने इस अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुष्प मालाएं बनाई। अवैदिक रीति के अनुसार उन्होंने ताजी दुर्वा मिश्रित दही लिया और विजय उल्लास को और अधिक शुभ बनाने के लिए उसे इधर उधर छिड़कने लगी। जब श्री कृष्ण गलियों से होकर गए तब सभी स्त्रियां अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी। श्री कृष्ण जी और बलराम रण क्षेत्र से एकत्र किए हुए आभूषण और रत्नादि अनेक प्रकार की सामग्री लिए जा रहे थे जिसे उन्होंने राजा उग्रसेन को उपहार में दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने नाना के प्रति आदर प्रदर्शित किया क्योंकि उस समय वही यदुवंश के राजा थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। अभी जरासंध एक बार आ रहा है, इसने शायद 17 बार आक्रमण किया।
बस आओ रास्ते में नाम गीता भागवत में अपना मन लगाना चाहिए, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या क्लास में क्या बोल रहा है, इसके ऊपर आप टीका टिप्पणी करोगे ना आप गुस्सा हो जो उनने क्या हो पूरी कल साफ बताया, ये सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है। और कुछ ने एक बार बताई कल कि आप चाहो तो भी आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिसके साथ नहीं चाहते,
मेरा भी